कर्नाटक आईटी सेक्टर में उथल पुथल, 14 घंटे का कार्य दिवस और कर्मचारियों का विरोध, अजित बालकृष्णन, 31 जुलाई 2024। पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु के कई आईटी पार्क, रिहायशी इलाकों और चहल पहल वाली सड़कों पर कुछ असामान्य देखने को मिला है। हाथों में तख्तियां और लाल झंडे लिए युवा आईटी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच इस तरह की कामकाजी वर्ग की कार्रवाई असामान्य है, लेकिन अधिकारियों को यह जानकर निराशा हुई कि 14 घंटे के कार्य दिवस की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ है। इन विरोधों को मिल रहा मीडिया का ध्यान भी अभूतपूर्व है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक सरकार को कंपनियों से काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने का प्रस्ताव मिला है। इसे शामिल करने के लिए यह कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। मौजूदा कानून ओवरटाइम सहित प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे काम करने की अनुमति देता है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि आईटी, आईटीएस, बीपीओ क्षेत्र के कर्मचारियों को लगातार 3 महीनों में प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक और 125 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जा सकती है। पिछले 2 हफ्तों से कर्नाटक राज्य आईटी, आईटीएस कर्मचारी संघ केआईटीयू विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, जिसमें आईटी पार्कों के सामने गेट मीटिंग, सड़क अभियान और श्रम मंत्री संतोष लाड को ईमेल लिखने का अभियान शामिल है। संघ के प्रतिनिधियों ने इस कदम पर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए श्रम मंत्री और श्रम विभाग और आईटीबीटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। वे 3 अगस्त को फ्रीडम पार्क में आईटी, आईटीएस, बीपीओ श्रमिकों का एक विशाल प्रदर्शन आयोजित करने का इरादा रखते हैं। संघ का विरोध मुख्य रूप से दोहरा है। सबसे पहले यह संशोधन व्यवसायों को मौजूदा 3 शिफ्ट प्रणाली के बजाय 2 शिफ्ट प्रणाली में संक्रमण की अनुमति देगा। इससे रोजगार में भारी कमी आ सकती है। दूसरा, विस्तारित कार्य घंटे पूरी तरह से अमानवीय हैं और कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। आधे से अधिक भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवर प्रति सप्ताह औसतन 52.5 घंटे काम करते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 47.7 घंटे से अधिक है। श्रमिक संघ का तर्क है कि 14 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य बनाने से यह खतरनाक स्थिति और खराब ही होगी। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नैसकॉम ने कहा कि उसने 14 घंटे की कार्य दिवस सीमा का अनुरोध नहीं किया था और उसे कर्नाटक विधेयक की जानकारी नहीं थी। नैसकॉम के उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति प्रमुख आशीष अग्रवाल के अनुसार वे बस देश के मानक 48 घंटे के कार्य सप्ताह में कुछ लचीलापन चाहते थे। हालांकि श्रम मंत्री संतोष लाड ने जोर देकर कहा कि उद्योग सरकार पर आईटी उद्योग में कामकाजी घंटे बढ़ाने का दबाव बना रहा है। एक बात तो तय है, कर्नाटक में आईटी, आईटीएस क्षेत्र में काम के घंटे बढ़ाने के लिए कुछ तिमाहियों से प्रयास किए जा रहे हैं और अगर इसे लागू किया जाता है तो इसका भारत के पूरे कामकाजी वर्ग पर दूरगामी असर होगा, न कि सिर्फ कर्नाटक की 8,785 तकनीकी कंपनियों में काम करने वाले लगभग 20 लाख कर्मचारियों पर। नियोक्ता लंबे कार्य दिवस पसंद करते हैं क्योंकि समय ही पैसा है। मौजूदा आर्थिक सोच के भीतर यह एक आसान मामला है। इस नवउदारवादी युग में व्यापार करने में आसानी के साथ सरकार का जुनून अक्सर श्रमिकों के सभ्य कार्य स्थितियों के अधिकार को नकार देता है। कर्नाटक में आईटी उद्योग को सबसे बुनियादी श्रम कानूनों से भी छूट मिलने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1,946 के औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम से छूट, जिसका उद्योग को वर्तमान में लाभ मिल रहा है, इसका एक उदाहरण है। यह एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसके तहत नियोक्ताओं को रोजगार की शर्तों और नियमों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि काम पर रखने और निकालने की प्रक्रिया, काम के घंटे, उपस्थिति और छुट्टी की नीतियां, रोजगार अनुबंध के प्रकार और नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के कदाचार को नियंत्रित करने वाले नियम। हालांकि राज्य सरकारें अपने विवेक से कुछ उद्योगों को छूट दे सकती हैं। कर्नाटक ने उद्योग लॉबी के दबाव के जवाब में 2009 में आईटी, आईटीएस, बीपीओ क्षेत्र को इस अधिनियम से पहली बार छूट दी थी और तब से यह छूट 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे हालिया छूट 10 जून 2024 को बढ़ाई गई थी। इसलिए इस क्षेत्र में काम के घंटे बढ़ाने के लिए कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करने के फैसले को एक अलग घटना या आश्चर्यजनक कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कार्य दिवस को बढ़ाने के प्रयास कई वर्षों से विभिन्न तरीकों से चल रहे हैं, जिसमें लागू कानूनों को बदलने के लिए लॉबिंग से लेकर इसे आदर्श बनाने के लिए वैचारिक सहमति प्राप्त करना शामिल है। पिछले साल इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने सुझाव दिया था कि देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय युवाओं को प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करना चाहिए। 6 दिन के कार्य सप्ताह को मानते हुए यह 1 दिन में 11.4 घंटे हैं, और उन्होंने उन दयनीय कार्य स्थितियों का उल्लेख करना नज़रअंदाज कर दिया जिनके तहत भारत के अधिकांश श्रम बल कार्यरत हैं, जिसमें दयनीय वेतन के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करना शामिल है। ज्ञान उद्योग के रूप में वर्णित होने के बावजूद श्रम समय अन्य फर्मों की तरह इसलिए पिछले कुछ सालों में आईटी कंपनियों ने मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी दरों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना काम के समय में क्रमिक वृद्धि देखी है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह 19वीं सदी के इंग्लैंड में मिल मालिकों द्वारा अपने मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के प्रयास से बहुत अलग नहीं है। दास कैपिटल में ऐसे कई फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्ल मार्क्स ने मजदूर के भोजन और मनोरंजन के समय से मिनटों की छोटी छोटी चोरी के बारे में लिखा और बताया कि कैसे क्षण लाभ के तत्व हैं। 21वीं सदी में भी 19वीं सदी की तरह ही आईटी सेवा कंपनियां मानती हैं कि क्षण लाभ के तत्व हैं। कर्मचारियों के समय से मिनटों की चोरी करना इन कंपनियों की लाभ अधिकतम करने की रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। उदाहरण के लिए 25 नवंबर 2008 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी में बताया गया था कि प्रौद्योगिकी कंपनियां काम के घंटे बढ़ा रही हैं और इन कठिन समय में कर्मचारियों से अधिक काम लेने के लिए पहले से कहीं अधिक सख्ती से काम किए गए घंटों की निगरानी कर रही हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार TCS ने काम के घंटे 1 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिए और संकेत दिया कि एक्सेंचर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी इस अभ्यास का पालन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिदिन 1 घंटे काम के घंटे बढ़ाकर एक कर्मचारी महीने में अतिरिक्त 22 घंटे काम करता है। यदि उसके काम के 1 घंटे का बिल $20 है तो कंपनी प्रति कर्मचारी $440 का अतिरिक्त बिल बनाती है। इस तरह का कार्य समय विस्तार उन परियोजनाओं के लिए अच्छा काम करता है जो समय और सामग्री मॉडल कहलाती हैं। लगभग 70% तकनीकी परियोजनाएं वर्तमान में इस मॉडल के अंतर्गत हैं, जबकि बाकी निश्चित मूल्य वाली परियोजनाएं हैं जहां सेवा प्रदाता लागत कम करने के लिए टीमों के आकार में कटौती का सहारा ले सकते हैं। 25 दिसंबर 2013 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी प्रमुख इन्फोसिस के कर्मचारियों द्वारा अपने कंप्यूटर पर बिताए गए वास्तविक समय को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर स्थापित करने के फैसले से व्यापक आक्रोश हुआ। रिपोर्ट में एक कर्मचारी के हवाले से कहा गया, पहले वे हमें 9 घंटे कार्यालय में रखना चाहते थे, अब वे यह मापना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर पर कितना समय बिताते हैं। ये नीतियां समय के साथ पूरी तरह से बेमेल हैं। तेजी से आगे बढ़ें 2024 में। उद्योग अब 14 घंटे के कार्य दिवस की अनुमति देने के लिए कानूनों को बदलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस बार एक अंतर है। पहले काम के घंटे बढ़ाने के प्रयासों का कर्मचारियों की ओर से कोई खास विरोध नहीं हुआ था, लेकिन इस बार इसका कड़ा विरोध हो रहा है। यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है। 8 घंटे का कार्य दिवस या 40 घंटे का कार्य सप्ताह सभ्य दुनिया में आदर्श बन गया, जिसके बाद श्रमिकों और उनके संघों द्वारा कई संघर्ष किए गए। कुछ शताब्दियों पहले औद्योगिक पूंजीवाद के उदय के बाद से नियमित कार्य दिवस के लिए संघर्ष वर्ग संघर्षों में एक प्रमुख विषय रहा है। जैसा कि ब्रिटिश विचारक डेविड हार्वे ने लिखा है, अर्थशास्त्र में प्रारंभिक पाठ्यक्रम कभी भी कार्य दिवस की लंबाई पर एक गंभीर मुद्दे के रूप में ध्यान केंद्रित करने की संभावना नहीं रखते हैं। शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भी इस पर चर्चा नहीं की गई थी। फिर भी ऐतिहासिक रूप से कार्य दिवस कार्य सप्ताह की लंबाई को लेकर एक स्मारकीय और निरंतर संघर्ष रहा है। कार्य वर्ष, भुगतान वाली छुट्टियां, कामकाजी जीवन, सेवानिवृत्ति की आयु और संघर्ष अभी भी हमारे साथ हैं। यह स्पष्ट रूप से पूंजीवादी इतिहास का एक बुनियादी पहलू है और पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में एक केंद्रीय मुद्दा है। संघर्ष जारी है।